ಓಂ ಶಾಂತಿ. सुबह का सत्र मेडिटेशन सीखने का, समझने का और अभ्यास करने का सत्र है. और खास यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है इसको राजयोग कहते हैं. योग शब्द का अर्थ है कि जोड़, कनेक्शन या मिलन मनाना. वियोग शब्द का अर्थ है अलग होना, बिछड़ना, सेपरेट हो जाना. तो यहां मिलन या कनेक्शन किसका, किसके साथ है? हम सभी मनुष्य योगी है ही है, क्योंकि दिन भर में जैसे ही हम उठते हैं और सोने तक किसी न किसी व्यक्ति को या कोई वस्तु को हम जरूर याद करते हैं. तो योग माना याद है. जब भी हम याद करते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति को, उनके साथ हमारा कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन जुड़ जाता है. तो ये जो कनेक्शन है वस्तु या व्यक्ति के साथ कनेक्शन जोड़ने से कोई आत्मा श्रेष्ठ नहीं बन जाती. हम वो आनंद की अनुभूति या शक्ति की अनुभूति हम आत्माएं नहीं कर सकती, सशक्त नहीं हो सकती. हाँ, कभी कभी हम अपने प्यारे लोगों को याद करते तो अंदर खुशी की अनुभूति जरूर होगी, लेकिन जो आत्मा संपन्न और संपूर्ण होना चाहिए वो नहीं हो सकता. तो इसीलिए यहां जो योग या याद या कनेक्शन की बात हम कर रहे हैं वो है उस परमपिता परमात्मा के साथ जो सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिनके साथ कनेक्शन जोड़ने से आत्मा सशक्त हो सकती है. ऐसे कनेक्शन जोड़ने से प्राप्तियां क्या है? हमें मेडिटेशन करना क्यों है? क्योंकि हम इस मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा अपने ही कर्मेंद्रियों पर हम राज्य करना सीख जाते हैं. इसीलिए इसका नाम है राजयोग. जो योग तो अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना जो सिखाता है वो है राजयोग. क्यों ये कर्मेंद्रियों पर राज्य करना जरूरी है? तो अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही सबसे मुश्किल बात है. दूसरों को एडवाइज करना, दूसरों को सजेशन देना, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही इजी है. लेकिन जो हम बोलना चाहे वही बोले, जो देखना चाहे वही देखे, जो सुनना चाहे वही सुने, जो करना चाहे वही करे, सबसे मुश्किल बात है, है ना? तो स्वयं के कर्मेंद्रियों पर कैसे हम राज्य कर सकते हैं? और बहुत मुश्किल बात नहीं है, केवल समझने की बात है. और इस मेडिटेशन को करने की तीन स्टेप्स है, तीन कदम है. सबसे पहला स्टेप है कि स्वयं को जानना, यथार्थ रूप से जानना. और दूसरा स्टेप है परमपिता परमात्मा जिनके साथ हमें योग लगाना है उनका यथार्थ परिचय, उनके बारे में समझ, जो कल के सत्र में, कल के सवेरे के सत्र में हम देखेंगे. और तीसरा स्टेप है कनेक्शन कैसे जोड़ना है, मेरा कनेक्शन उस परमपिता परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना है, वो तीसरा स्टेप है जो तीसरे दिन में सवेरे के सत्र में हम देखेंगे। तो अभी के सेशन में हम ये देखें कि स्वयं का यथार्थ परिचय। तो स्वयं का परिचय जब हम कहते हैं, जब किसी को भी इंट्रोड्यूस करना करने के लिए कहते, जैसे बहन ने मेरा परिचय दिया, वो सारा कुछ जो परिचय था, चाहे वो जैसे जी परिचय देना शुरू करते हैं, सबसे पहले नाम आता है, फिर प्रोफेशन आता है, क्वालिफिकेशन आता है, तो क्वालिटीज आते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसके बाद इसमें परिचय में आता है। तो ये जो परिचय हम कहते हैं अपने बारे में, क्या ये संपूर्ण परिचय है या कुछ अधूरापन है उसमें, क्या कहेंगे? अधूरापन है। तो वो अधूरापन क्या है जिसको भरना है, क्या है? मैं कौन? तो वो तो नाम आ गया, प्रोफेशन आ गया, क्वालिफिकेशन आ गया, गुण और कर्तव्य आ गए, तो उससे भी बढ़कर कुछ है। किस लिए आया हूं यहां? वो तो खुद को एक्सप्लोर करने की बात है ना, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। हर एक के लाइफ का पर्पस अलग अलग होता है, खुद को एक्सप्लोर करने की बात है। हाँ, जो भी यह परिचय दिया गया केवल शरीर का परिचय था, है ना? जो इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी फोर्स है, या फिर हम कहते हैं रूह है, आत्मा है, स्पिरिट है, जो लिविंग फोर्स है इस शरीर के अंदर, उसका परिचय तो नहीं दिया गया। हाँ, क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो अंडरस्टूड है, अगर व्यक्ति जिंदा है तो इसका मतलब है वो लाइफ फोर्स उसके अंदर है ही है। तो यही तो अंतर है, जिंदा व्यक्ति और मृतक शरीर का अंतर यही है। जो डेड बॉडी वहां पड़ा है तो उसके बारे में सोच करके हम बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं, ये व्यक्ति हमसे दूर हो गए, चले गए, लेकिन शरीर तो दिखाई दे रहा है ना, वहां इंटैक्ट है, कुछ भी, कुछ खरोच भी नहीं आया हुआ है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हमको हम कहते हैं ये व्यक्ति हमसे दूर चले गए। तो अंतर क्या है डेड बॉडी और लिविंग पर्सन के बीच में, अंतर क्या है फिर? जो वो लिविंग लाइफ फोर्स था अंदर, जिसको हम आत्मा कहते हैं या स्पिरिट, रूह, सोल, जो भी हम कहते हैं, तो वो एब्सेंट है उस डेड बॉडी में, है ना? तो ये अभी दो चीजें हो गई ना, आत्मा और बॉडी, ये दो चीजें हो गई है। तो अभी अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो अपने आइडेंटिफाई जो हम करते हैं, नाम, नेशनैलिटी, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, जेंडर, रिलीजन, जो भी इन चीजों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, या ये क्या हमारा ओरिजिनल निजी आइडेंटिटी है या अक्वायर्ड है? अक्वायर्ड है। जिस घर में अगर हिंदू, जो हमारे पेरेंट्स अगर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, अगर उस घर में हमने जन्म लिया तो हिंदू धर्म माना गया, जिस घर में मुसलमान धर्म माना जाता है उस घर में जन्म लिया तो उस पर्टिकुलर रिलीजन या धर्म के साथ आइडेंटिफाई हुआ जाता है, और जो भी उस घर के साथ जो रीति रिवाज है, जो बिलीफ सिस्टम है, तो उसको हम फॉलो करना शुरू करते। तो या पेरेंट्स से या फिर आसपास के लोगों से हम उन चीजों को समझते हुए अक्वायर करना शुरू करते हैं। लेकिन जन्म लेते ही पहले दिन में जो बच्चा है जिसको नाम नहीं है, नाम अभी पेरेंट्स ने नहीं दिया हुआ है, उसका कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है, तो भी वो व्यक्ति जिंदा है या फिर निजी आइडेंटिटी नहीं है। निजी आइडेंटिटी क्या है हम सभी का? वो है वी आर नॉट इवन अ मस्कुलर स्केलेटन बॉडी मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स, जो पांच तत्वों से ये जो बना हुआ है, ये भी शरीर हम नहीं है, हम है एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा जो इस ब्रेन के बीचों बीच जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के वहां विराजमान है, ब्रेन में वो आत्मा विराजमान होती है, वो है जो इस शरीर को ड्राइव करने वाली या कंट्रोल करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। कई लोगों को ये डाउट आता है कि आत्मा वहां क्यों है, जैसे हम हर जगह पर उसको महसूस कर सकते हैं। अगर नाखून में भी थोड़ा दर्द होता है, दर्द तो महसूस होते ही है ना, को कहीं भी पांव में, हाथ कहीं भी, शरीर में कहीं भी कुछ दर्द होता है तो आत्मा उसको महसूस करती है। तो इसका मतलब क्या है, ये शरीर में पूरी तरह आत्मा विराजमान है। तो हाँ, शक्ति तो है ही है आत्मा की, क्योंकि डेड बॉडी को कोई महसूस नहीं होता, दर्द पेन जरूर महसूस नहीं होता, कितना भी काटो कितना भी मारो डेड बॉडी को, वो दर्द महसूस नहीं होता। दर्द महसूस करने वाले कौन है फिर? शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के द्वारा आत्मा उसको महसूस करती है। कोई भी फीलिंग्स है, दुख दर्द खुशी आनंद, कोई भी फीलिंग्स है, शरीर महसूस नहीं करता, आत्मा शरीर के द्वारा महसूस करती है। तो ब्रेन में, जैसे हम सभी को पता है कि ब्रेन से वो सारा नर्व सिस्टम फैलता है और वो कंट्रोलिंग सिस्टम सारा ब्रेन में है। जैसे एक ड्राइवर है कार का, कार का ड्राइवर कहाँ बैठता है? पीछे वाले सीट में बैठ करके कार को ड्राइव कर सकता है? हाँ? नहीं, वहां आगे की सीट में ही क्यों बैठना चाहिए उसको? क्योंकि वहां स्टीयरिंग है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, सभी कंट्रोलिंग पॉइंट्स जहां है वहां ड्राइवर को बैठना होगा, ताकि फिर गाड़ी को वो कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे ही आत्मा को भी वहां ही बैठना होगा जहां पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो ब्रेन है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जब भी हम पूजा करते हैं तो तिलक जरूर लगाते हैं पहले। तो सबसे पहले जब मंदिर में जाते हैं, अपने जूते चप्पल बाहर निकाल करके फिर अंदर जाते हैं, तिलक लगा करके फिर हम पूजा करते हैं। इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यही है कि जूते चप्पल क्यों बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये बॉडी के कॉन्शियसनेस को त्यागना है, त्याग करके अपने आप को आत्मा समझ करके फिर जब परमात्मा को याद करते हैं वो कनेक्शन जुड़ता है। तो इसीलिए मन मना भव कहा, अपने आप को आत्मा समझ करके मुझ परमात्मा को याद करो, है ना। तो इसीलिए वो सिग्निफिकेंस भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं। और जब भी हम भाग्य की बात करते हैं, मेरा भाग्य ही फूट गया है, ऑटोमेटिकली हाथ कहाँ जाता है? माथे पर जाता है। मेरा भाग्य पता नहीं क्या हो गया है मेरे भाग्य को, भाग्य के बारे में कहते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है, तो ऑटोमेटिकली हाथ यहाँ चला जाता है। तो यहाँ क्या अपना भाग्य लिखा हुआ नजर आता है? किसी का भी भाग्य यहाँ स्थूल रूप से लिखा हुआ नजर नहीं आता, लेकिन भाग्य कौन लेके आता है? आत्मा ही भाग्य लेके आता है, आती है वो कर्म के हिसाब से। अगर अच्छा कर्म करती है आत्मा तो अच्छा भाग्य। भाग्य कोई लॉटरी नहीं है, लेकिन कर्म का ही फल है भाग्य। तो इसलिए कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, जो भी कैटेगरीज हम देते हैं मनुष्य को नहीं देते लेकिन आत्मा को देते हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो आत्मा में रजिस्टर होता है। तो भाग्य आत्मा लेके आती है, भाग्यशाली आत्मा कहते हैं, है ना? पाप आत्मा कहते हैं। तो आत्मा में वो रजिस्टर होने के कारण से हम ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाता है अपना हाथ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें पता है आत्मा वहां विराजमान है। और तीसरी चीज है कि जब भी हम किसी के मूड को समझना है तो क्या देख करके पता चलेगा उसका मूड अच्छा है या बुरा है? फेस को देख करके पता चल जाता है इसका मूड आज कैसा है, वो भी आंखों को देख करके। आंखों से बहुत ज्यादा हम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं आंखों से दिखाई दे देता है। आंखें झूठ नहीं बोल सकती, है ना? क्यों? क्योंकि आत्मा के नजदीक जो ऑर्गन है वो आंखें हैं। तो इसलिए आत्मा जो जिस इमोशन से गुजर रही है तो बहुत जल्दी आंखों से रिफ्लेक्ट होती है। तो इन सभी एग्जाम्पल से समझ में आता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, स्कल के बीचों बीच विराजमान है, जहां से पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। तो आत्मा अनादि अविनाशी है। जो हम जन्म और मृत्यु की बात कर रहे हैं, जन्म किसका है और मृत्यु किसका है? शरीर का, है ना? तो क्योंकि जन्म का डेफिनेशन क्या है, बर्थ का डेफिनेशन क्या है, आत्मा का शरीर में प्रवेश हो जाना, ये है जन्म। मृत्यु क्या है? आत्मा का शरीर से बिछड़ जाना, अलग हो जाना, ये है मृत्यु, है ना? ये दो चीजें हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा अनादि अविनाशी है, जिसका कोई मृत्यु नहीं है, वो चैतन्य शक्ति है। लेकिन उसके कंपैरिजन में शरीर क्या है? शरीर जड़ है, है? जैसे डेड बॉडी को काटो पीटो, जड़ है, शरीर जड़ है, उसमें कोई चैतन्यता नहीं है। और इस शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं है, आत्मा के कारण से एनर्जी इस शरीर में आता है। भले बॉडी कितना भी वैल्यूबल है, बॉडी बहुत वैल्यूबल है, आज के दिन एक एक ऑर्गन को मैं बेचने जाऊं तो कितने लाखों करोड़ों में वो एक एक ऑर्गन बिकता है। तो पूरे शरीर का अगर देखे, आंखें, ब्रेन, लिवर, किडनी, ये सारी चीजें, जो हर चीज बहुत ही वैल्यूबल है, इसकी देखभाल हमें करना चाहिए। लेकिन बॉडी ही सब कुछ नहीं है। बॉडी का वैल्यू तब है जब इस बॉडी के अंदर आत्मा है। आत्मा चली गई, इस बॉडी को अपने जो निकट संबंधी है, जो बहुत प्यार करते हैं मेरे से, फिर भी 3 दिन भी वो बॉडी घर में नहीं रखेंगे, डिस्पोज कर लेंगे। भले कितना भी प्यार करेंगे लेकिन बॉडी को तो प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे। बॉडी वैल्यूएबल है, लेकिन बॉडी से भी वैल्यूएबल कौन है? बॉडी से भी वैल्यूएबल कौन है? आत्मा है। तो इसीलिए आज से किसको ज्यादा वैल्यू देंगे हम? आत्मा को। सुबह से शाम तक जो भी हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते, जो भी हम मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, वो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? शरीर के लिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए, शरीर के लिए घर चाहिए, शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, शरीर के लिए सारे कुछ चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, जो भी चाहिए, परिवार चाहिए, क्योंकि इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो सिक्योरिटी चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं वो केवल शरीर के लिए कर रहे हैं, और एक दिन इस शरीर को तो छोड़ के जाना है। तो आत्मा के लिए हमने क्या किया फिर, जो अति वैल्यूबल है, शरीर से भी वैल्यूबल है, तो आत्मा के लिए हमने क्या किया अब तक, है ना? शरीर को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, हेल्दी भोजन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे, लेकिन आत्मा के लिए ख्याल रखा, आत्मा के लिए समय निकाला, उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको संपूर्ण बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात है कनेक्शन क्या है। सबसे हमने ये अभी समझा, ये अलग अलग है, आत्मा और शरीर ये अलग अलग है। तो कनेक्शन क्या है आत्मा और शरीर का, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आत्मा का शरीर के साथ कनेक्शन है, है ना? शरीर धीरे 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 बढ़ता जाता है, आयु बढ़ती जाती है शरीर का, लेकिन आत्मा और शरीर का जो कनेक्शन है इतना गहरा है ना? तो इसीलिए यहां दिखाया जाता है कि आत्मा मोती है और शरीर सीप है। सीप चाहिए वो पर्ल बनने के लिए, मोती बनने के लिए, लेकिन वैल्यूएबल क्या है, मोती है। मोती मिलने के बाद सीप को फिर फेंक देते हैं। ऐसे गाड़ी, गाड़ी भले कितने भी करोड़ों रुपयों का क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो रोड पर नहीं आता, ड्राइवर ड्राइव नहीं करता, तब तक उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। शरीर कितना भी वैल्यूएबल है, लेकिन आत्मा ड्राइवर इस शरीर के अंदर नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। घर कितना भी मल्टी मिलियन का क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हॉन्टेड हो जाएगा, भूत बंगला बन जाएगा, है ना? तो लोगों का होना बहुत जरूरी है घर के अंदर, इस शरीर के अंदर। शरीर मेरा घर है, लेकिन आत्मा मैं इस घर का मालिक हूं। ये शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा रथी हूं। इसीलिए बॉडी को क्या कहते हैं, हिंदी में अर्थी कहते हैं, अर्थी को लेके आओ, है ना? बॉडी को अर्थी कहते हैं। अर्थी क्यों, मतलब है जो रथ जिसके अंदर रथी ना हो, अरथी, है ना? रथ है ये शरीर जिसके अंदर रथी ना हो, आत्मा ना हो, अर्थी हो गया ये शरीर, है ना? मैं इस रथ का रथवान हूं, मालिक हूं। ये मेरा किंगडम है, राज्य है, मेरे आंखें, मेरे कान, मेरे मुख, मेरे सारे जो कर्मेंद्रियां हैं, मेरा किंगडम है, मेरा राज्य है। मैं आत्मा इस राज्य का राजा हूं। ये मेरा है, लेकिन मैं आत्मा हूं। ये मेरा मोबाइल है, मैं आत्मा सिम हूं। जब तक सिम नहीं लगता, कनेक्शन जुड़ता नहीं है। मैं आत्मा रोबोट, मेरे शरीर रोबोट है, मैं आत्मा प्रोग्राम करती हूं, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, मैं आत्मा इनको डायरेक्शन देती हूं, इनको प्रोग्राम देती हूं। ये मेरा कनेक्शन है आत्मा का और शरीर का कनेक्शन है। सोल इज द मास्टर ऑफ द होल बॉडी, पांचों ही तत्वों का मालिक है, किंग है, राजा है। तो ये है कनेक्शन आत्मा का शरीर के साथ। तो अभी नेक्स्ट बात है, आत्मा का निजी गुण क्या है, ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है। कई बार हम कहते हैं कि अगर मैं, जब मुझे फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस मेरे में अंदर लगातार आता है, तो फिर मैं कहती हूँ मैं हुई ऐसे, मेरा गुण ही ऐसे है, मैं हुई ऐसी। हम उस अवगुण के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मैं मेरे अंदर क्रोध है, मैं क्रोधी हूँ, मेरा अंदर वो फ्रस्ट्रेशन है। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर जो दिखाई देता है, क्या वो मैं हूँ? आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज है, क्या कहेंगे? नो। व्हाई? हाउ? लेकिन कहने में तो आता है मैं हुई ऐसी, मैं लेजी हूं, मैं हूं ये हूं। अपने आप को इस नेगेटिव क्वालिटीज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी है सारे नेगेटिविटी। अक्वायर्ड है, कहां से अक्वायर किया? और ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है और कैसे हम कैसे माने कि ओरिजिनल क्वालिटीज मेरे पॉजिटिव है? कंटिन्यूअसली नहीं रह सकते, है ना? अगर क्रोध अगर करें, कितना आप क्रोध कर लेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट? अगर नाराज भी रहेंगे किसी के साथ, कितना कितना रह सकते? और अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं फील करते। अगर कोई किसी के साथ भी नाराज रहेंगे, कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल क्या है? शांति है। कंफर्टेबल क्या है? सुख है। कंफर्टेबल क्या है? खुशी है, प्रेम है, ज्ञान है। ये सारे जो गुण है वो अपने गुण होने के कारण से कंफर्टेबल है, और इनके साथ हम लंबे काल तक वो उसको अभ्यास कर, उन गुणों में हम स्थिर रह सकते हैं, टिक सकते हैं। लेकिन अवगुण जब भी आए तो हम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि अपनी चीज नहीं है ना। जैसे कि कोई भी देश वाले, एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत वाले कहीं भी बाहर देश में जाएंगे, तो अगर बहुत दिनों तक सिर्फ विदेशी विदेशी नजर आ रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन के बाद कोई भारत वाला नजर आया, तो कितना खुशी होगा आपको? हाँ, यहाँ तो भारत वाला है, उनसे मिलकर के खुशी। अपने देश वाले हैं, भले स्टेट्स अलग होंगे, आपका स्टेट अलग है, उनका स्टेट अलग है, लेकिन फिर भी वो अपनापन महसूस होता है, क्योंकि अपनी चीजें हैं। जो अपनी चीजें होती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आत्मा के अंदर ये जो 7 गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं आत्मा के, इसीलिए आत्मा को सतो गुणी कहा जाता है। 7 गुण कौन कौन से हैं? प्यूरिटी है, पवित्रता है, क्योंकि थोड़ा भी हेरा फेरी भले करते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता। मैनिपुलेशन, झूठ मूठ अच्छा नहीं लगता, प्यूरिटी अच्छी लगती है। प्यार, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। प्यार से रहना हर एक के साथ अच्छा लगता है। हैप्पीनेस, खुशी, वो भी अच्छी लगती है। शांति, वो भी अपनी चीज है, अपना निजी गुण है आत्मा का। शक्ति, निशक्तता अच्छा नहीं लगता। ज्ञान और आनंद, ये सारे 7ों ही गुण अपना ओरिजिनल गुण है। लेकिन जो अवगुण हम महसूस करते हैं वो क्या है? वो कैसे आत्मा के अंदर आ गई, और इन सभी चीजों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? वो इतना मुश्किल नहीं है। जैसे शरीर की इम्यूनिटी जब कम हो जाता है, तो कोई जर्म्स अफेक्ट करना शुरू करता है। जितना इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है बॉडी का, कितना भी घूमो, कितना भी वायरसेस हो, उसका अफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बॉडी का ज्यादा है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये 7ों ही गुण 100% है तो बाहर के जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही परसेंटेज कम हो गया उसका अवगुण विपरीत अपने अंदर महसूस करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, अगर शांति की मात्रा परसेंटेज ऑफ पीस मेरे अंदर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, 100% नहीं है मेरे अंदर शांति, अंदर कम हो गया परसेंटेज, उसका अपोजिट जो हम महसूस करते हैं वो है अशांति, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब आत्मा अनुभव करती है। तो इसमें हमें ये मेहनत नहीं करना है क्रोध को, क्रोध से मुक्त कैसे बनना है, नहीं, क्रोध क्यों आया, क्रोध क्यों आया, शांति का परसेंटेज कम होने के कारण से, है ना। हमें एंगर को ट्रीट नहीं करना है, क्या ट्रीट करना है, शांति के परसेंटेज को बढ़ाने का अभ्यास करना है। एंगर ऑटोमेटिकली चला जाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की मेहनत करनी है, उस पर्टिकुलर बीमारी को ट्रीट करने के साथ साथ हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, है ना। तो इस पर्टिकुलर बीमारी, शांत जो एंगर है, क्रोध है, इस पर्टिकुलर बीमारी का तोड़ क्या है, मेडिसिन क्या है, मेडिटेशन में शांति की अनुभूति, मेरा आत्मा के अंदर परसेंटेज शांति का मैं बढ़ाती चलूं, तो ग्रेजुअली ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ सम डेज वो अशांति और एंगर कम होना शुरू होता है। हाँ जी, प्रैक्टिकली देखें, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होने से क्या सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, और ही यहां बुद्धि क्लॉटेड हो जाएगा और ही यहां फिर बंद हो जाए, तो इसलिए क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग नहीं रहेगा, तो आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। जितना मन और बुद्धि शांत है, रिलैक्स्ड है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। यहां ये भी जैसे जैसे आप मेडिटेशन करना सीख जाएंगे तो आप जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो फिर पता चलेगा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम हर एक के जीवन में है, किसके जीवन में नहीं है, प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे और ही प्रॉब्लम को हम एनर्जी दे रहे हैं, इसके कारण से ऐसा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ, इसने गलती की, इसे हो गया, डोंट थिंक ऑफ द, अभी सॉल्यूशन क्या, ठीक है, हो गया हो गया, अभी क्या करना क्या है सॉल्यूशन। तो ये करते करते आप इतना अकस्टम्ड हो जाएंगे, तो ठीक है आज नहीं हुआ, ये जो काम करना था नहीं हुआ, देन यू स्टार्ट टू थिंक ओके कल कैसे कर सकते, क्या प्रॉब्लम्स आए, सॉल्यूशन क्या है, तो फिर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने के कारण से सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे, तो फिर आपका फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाए। इट्स इंटरकनेक्टेड, जितना शांत है उतना फिर हम सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करेंगे और फिर सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, फिर हम शांति और स्टेबिलिटी अपने अंदर आता जाएगा, राइट, इट्स इंटरकनेक्टेड दोनों। इसीलिए केवल एक दो दिन में तो नहीं हो पाएगा, यू हैव टू एक्सपीरियंस प्रैक्टिस इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लंबे काल तक आप अभ्यास करते जाएंगे तो फिर वो चेंजेस आना शुरू होगा, और हर रोज करने की बात है। तो मान लीजिए मैं बहुत बीमार हूं और मसल्स में ताकत ही नहीं है और डॉक्टर ने कहा आपको एक्सरसाइज करना है, एक दिन दो दिन चार दिन करने के बाद मैं इसको कुछ तो अंतर पड़ ही नहीं रहा है, चार दिन में तो नजर नहीं आएगा ना, तो लगातार 15 दिन, 1 मास, 3 मास करूंगी, तब जाकर के मेरे बॉडी के मसल स्ट्रांग होता जाएगा, फिर उसका रिजल्ट नजर आएगा। ऐसे ही मेडिटेशन भी जितना आप करते जाएंगे उतना फिर रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए तो जो भी क्वालिटीज कम होगा तो उसका विपरीत हम क्या अनुभव करते हैं, ज्ञान का परसेंटेज कम होगा तो डाउट ब्लाइंड फेथ अंधश्रद्धा बढ़ता जाएगा, ईगो बढ़ता जाएगा। क्योंकि सही मायने में ज्ञान, ज्ञानी व्यक्ति बहुत निर्माण होता है, आधे अधूरे ज्ञानी जो होते हैं ना उनके अंदर बहुत ईगो होता है ना। जितना ज्ञानी होते जाएंगे उतना हम्बल होते जाएंगे लोग। और प्योरिटी, पवित्रता आत्मा के अंदर कम है। ये जो नेगेटिव चीजें, ऑब्सीन चीजें हैं, वेस्ट बातें हैं, मैनिपुलेशन है, हेराफेरी है, करप्शन है, ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। और फिर लव की कम है, की कमी है, तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस, खुद में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो देने की भावना कम होगा। प्यार कम होने से ये सारी चीज, सेल्फ फोकस्ड, खुद के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। शांति की मात्रा कम होगा तो फिर एंगर, टेंशन, फियर, ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। फिर हैप्पीनेस, खुशी कम है तो फिर लालच, लोभ, संतुष्टता नहीं है ना, खुशी नहीं है, दूसरे के पास जो है उस पर नजर है, खुद में खुद के पास जो है उससे हम संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो इसीलिए लालच, लोभ, ये सब कुछ, जलसी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ बढ़ेगा। आनंद की कमी है, आनंद माना परमानंद कम है तो फिर आत्मा कुछ चाहती है, अटैच तो चाहती है, तो फिर परमात्मा से लेने के बजाय हम लोगों से लेने की कोशिश करते हैं, ये मुझे प्यार से बात करे, इनसे मदद चाहिए, तो फिर अटैचमेंट्स बढ़ना शुरू होता है। फिर शक्ति की कमी है तो केवल हम मसल पावर, बॉडी पावर पर ज्यादा हम ध्यान देंगे, आत्मा की शक्ति पर कम हम ध्यान देते हैं। तो फिर पोस्ट, पोजीशन, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आत्मा कोकली है, आत्मा निशक्त है, तो उसको हम कैसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर रोब दिखा करके, मोह मैं हूं बहुत बड़ी, मेरा सुनना पड़ेगा। तो ऐसे पावर, पोजीशन का पावर, कोई फिजिकल पावर, या ऐसे पावर दिखा करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते। अगर आत्मा सचमुच शक्तिशाली है तो फिर हमें जताने की जरूरत नहीं है कि मैं शक्तिशाली हूं। तो इसीलिए इन सभी गुणों को जब हम अनुभव करते हैं, 100% तक लेके जाते हैं, तो आत्मा संपन्न, संपूर्ण बनती जाएगी और ये सारे नेगेटिविटीज निकलती जाएगी धीरे धीरे। तो कैसे ये प्रोसेस को करना है, इस प्रोसेस को करना है, ये समझना है उसके लिए कि कैसे आत्मा कार्य करती है। जैसे शरीर में ऑर्गन्स हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, ऐसे आत्मा के 3 ऑर्गन्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा हम सोचते हैं, आत्मा जब सोचती है उसको मन कहते हैं, बुद्धि निर्णय करती है, और जो भी हम निर्णय करते हैं वो कर्म में ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो कर्म जब रिपीट होता है वो संस्कार बन जाता है। तो एक एक हम देखेंगे। मन, मन में जो चित्र में देख रहे हैं ये वेव्स की तरह है, राइट। तो निरंतर हम आत्माएं जो मन, जो भी हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस बाहर जा, अगर मैं गलत सोच रही हूं, नेगेटिव सोच रही हूं, नेगेटिव वाइब्रेशंस जा रहा है, अच्छा सोच रही हूं, वाइब्रेशंस पॉजिटिव, वातावरण पर प्रभाव, हम निरंतर हम प्रभावित कर रहे हैं। उसके प्रूफ क्या है, अगर मंदिर में जाते हैं, जो भी हम प्रेयर प्लेस पे जाते हैं, कोई भी प्रेयर प्लेस पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है वहां। क्यों? क्योंकि वहां जो भी आते हैं परमात्मा को अपने तरीके से वो याद कर रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ रहे हैं अपने आप को, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली वहां का पावरफुल होता जाता है तो वो प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। और जेल में जाते हैं, वहां की एनर्जी कैसा है, वहां का एनर्जी बहुत हैवी होता है क्योंकि वहां जो लोग होते हैं क्रिमिनल्स जो भी है नेगेटिव करके आए हैं, तो वहां की एनर्जी बहुत हैवी है क्योंकि वहां के रहने वालों के कारण से वहां का वातावरण है। हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां के एनर्जी भी बहुत अनकंफर्टेबल है क्योंकि वहां जो पेशेंट्स जाते हैं बहुत दर्द के वाइब्रेशंस है, तो वहां भी हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इससे सिद्ध होता है नॉन लिविंग थिंग्स से हम वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं होता, इंसानों से आत्माओं से वो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं अच्छे वाइब्रेशंस फैलाते हैं, बुरा सोचते हैं बुरे वाइब्रेशंस फैलते हैं। अब प्रैक्टिकली देखे होंगे किसी के कुछ लोगों के घर में जाते बहुत अच्छा लगता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स, नॉट बिकॉज ऑफ द डेकोरेशन, फर्नीचर के कारण से नहीं, फर्नीचर बहुत सिंपल होंगे लेकिन वहां के अच्छा लगता है क्योंकि वहां के रहने वालों की जो सोच है वो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, सात्विक होता है, तो इसलिए उनका घर अच्छा लगता है। किसके घर में जाते बहुत हैवी फीलिंग क्योंकि उनके घर में शायद लड़ाई झगड़े बहुत, ये अनबन बहुत, टकराव वहां ये चल रहा होगा। तो वी आर द वंस हु क्रिएट दोज वाइब्रेशंस, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ये जो सोच है तो वो लगातार एक के पीछे एक आ रहे होते हैं। तो इसीलिए चार प्रकार के विचार हम क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स और नेसेसरी थॉट्स। पॉजिटिव जितना सोचेंगे उतना मन की शक्ति बढ़ता जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। नेगेटिव थॉट्स जितना हम करते जाएंगे एनर्जी, मन की एनर्जी कम होता जाएगा। लेकिन पॉजिटिव क्या है, हम बहुत कुछ सुनते आए हैं, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन पॉजिटिव किसको कहते हैं, क्या कहेंगे, पॉजिटिव किसको कहेंगे, श्रेष्ठ विचार। श्रेष्ठ विचार क्या है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है सोचने से, ओके, लेकिन क्या सोचना है, पॉजिटिव है क्या फिर, हाउ कैन वी कैटेगराइज, हाँ ये थॉट्स पॉजिटिव है ये थॉट्स नेगेटिव है, शांति के थॉट्स पॉजिटिव हैं, जो मुझे ऊर्जा देता है, ओके, कौन से थॉट से जो ऊर्जा देता है, सिचुएशन के हिसाब से है, ओके, हाँ, उनके आधार से जब हम सोचते हैं वो है पॉजिटिव थॉट्स, है ना। तो आप सभी ज्ञानी तो है ऑलरेडी, समझ तो है। कोई कहते हैं जिसमें हम खुश हो जाएं, खुशी मिले, लेकिन अगर हम कहें कि हाँ दूसरों के टांग खींचने से मुझे खुशी मिलती है तो फिर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है वो नहीं है, है ना। क्यों पॉजिटिव नहीं है, दूसरों को तकलीफ दो, कर्म है ना, कर्म की गति बहुत गुई है, जो हमने किया वो वापस जरूर आएगा, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, है ना। तो आज हमने दुख दिया हम तो खुश हो गए, लेकिन कल मुझे दुखी होना पड़ेगा क्योंकि मैंने किसी को दुख दिया है। सिंपल डेफिनेशन है पॉजिटिव पॉजिटिविटी का, जिसके द्वारा मैं दूसरों को सुख मिले और इन टर्न मैं खुद सुखी हो जाऊं। सुख देना और सुख अनुभव करना, ये है पॉजिटिविटी, है ना। नेगेटिविटी क्या है? जो हम दूसरों को दुख देंगे और इन रिटर्न हम दुख अनुभव करते हैं, वो है नेगेटिविटी। लेकिन फिर शॉर्ट टर्म दुख अलग होता है, इंटेंशन भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, जो सर्जरी करता है लेकिन पेशेंट को तो दर्द हो रहा है, लेकिन सर्जरी करने के पीछे का इंटेंशन क्या है? पॉजिटिव है, है ना। शॉर्ट टर्म वो उन कुछ दिनों के लिए दर्द है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सुख है, है ना। तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो देखना पड़ेगा। जैसे लॉन्ग टर्म सुख अगर है तो अभी इमीडिएटली दुख मिल रहा है उसका मायना नहीं। इंटेंशन बिहाइंड द कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो पॉजिटिव में गिना जाएगा। और कई बार ऊपर ऊपर से हम मीठे होते हैं, लेकिन मीठे छुरी पीछे से वो नेगेटिव है, भले उस समय बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इंटेंशन नेगेटिव होने के कारण से उसको नेगेटिव में गिना जाएगा। और तीसरी बात है वेस्ट। वेस्ट पॉजिटिव जितना पावरफुल भी नहीं है और नेगेटिव जितना खराब भी नहीं है। इन बिटवीन, इन बिटवीन में क्या होता है? इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, बहुत खतरनाक है, पता नहीं चलता है, वेस्ट होता जा रहा है। मन की शक्ति स्लो पॉइजन की तरह कम होता जाएगा। जैसे स्लो पॉइजन देते जाएंगे इमीडिएटली पता चलेगा कुछ गड़बड़ है शरीर में, लेकिन लंबे काल तक लेने के बाद फिर पता चलेगा उसका फिर रिजल्ट बॉडी में। ऐसे वेस्ट थॉट्स करते करते धीरे 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 मन की एनर्जी कम होता जाएगा, फिर बाद में एक दिन पता चलेगा मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे ये फलाना प्रॉब्लम है। तो क्यों आया? लंबे काल से वेस्ट थॉट्स क्रिएट करने के कारण से ये सब कुछ आया है। तो वेस्ट थॉट्स क्या है? अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचना और अनावश्यक फ्यूचर के बारे में सोचना, जो कोई भी मायना नहीं रखता है, वो है वेस्ट, है ना। तो जैसे कई चीजें बीत गई लेकिन उसके बारे में सोच सोच करके कुछ फायदा है? अगर आपको देखे आपके अंदर मेमोरीज है, जो बचपन से जो करते आए हैं वो सारे मेमोरीज हैं, है ना। तो पॉजिटिव मेमोरीज ज्यादा है ना नेगेटिव मेमोरीज ज्यादा है? क्या कहेंगे? पॉजिटिव मेमोरीज ज्यादा है नेगेटिव मेमोरीज ज्यादा है? अगर मेजॉरिटी का है, ज्यादा क्या है? नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है? नेगेटिव मेमोरीज क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसको पकड़ करके रखते हैं, है ना। पॉजिटिव मेमोरीज को हम मायना ही नहीं देंगे। सिंपल एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए हम कोई ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, रोज नौकरी करने जॉब करने जा रहे हैं, एक घंटा का सफर है, तो वो अगर 9 बजे का बस ले रहे हैं तो फिर वी टेंड टू बिकम फ्रेंड्स विद दोस पीपल। हर रोज जो ट्रैवल कर रहे हैं उसी टाइम पे, सो वी बिकम फ्रेंड्स। तो अच्छी समय बिताते हैं, एक घंटा हर रोज गॉसिप कर रहे, चैट कर रहे, ये कर रहे, खुशी गोज ऑन वेल, अच्छे मेमोरीज है, अच्छा टाइम बीत जाता है। लेकिन फिर एक दिन, मे बी अबाउट 30th डे, कुछ किसी के साथ अनबन होता है, कि आर्ग्यूमेंट, लड़ाई नहीं, बहुत ऐसे जबरदस्त फाइट नहीं, लेकिन अनबन हो जाता है या कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हॉट डिस्कशन कुछ ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, चलते रहे। फिर 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद क्या याद रहेगा आपको? वो 29 days ऑफ गुड टाइम, या फिर एक दिन के जो आर्ग्यूमेंट हो गया, कौन सा याद रहेगा? कौन सा याद रहेगा? एक दिन का आर्गुमेंट याद रह जाएगा। अगर देखे 29 डेज ऑफ हैप्पीनेस और वन डे ऑफ लिटिल बिट ऑफ सॉरो, कौन सा भारी है? वैसे तो 29 डेज जो हमने एंजॉय किया वो भारी होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो दुख था उसको हमने भारी बना दिया, क्योंकि बार बार उसके बारे में हमने सोचा, ऐसा क्यों होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो ये उसको ज्यादा मैंने इम्पोर्टेंस दिया, तो एनर्जी वहां ज्यादा गया। तो मेमोरी जो हम रिपीट करते हैं, चाहे वो कर्म या फिर सोच, बार बार जब हम रिपीट करते हैं वो संस्कार बन जाता है, राइट? नेगेटिविटी को भले हम अपने जीवन में कोई भी देखे, अपने जीवन में सुख ज्यादा है और दुख बहुत कम है। 95% सुख है और 5% टू 2% दुख है हर एक के जीवन में, लेकिन हम दुख को पकड़ करके रखते हैं और उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। इसके कारण से जो क्यों है, क्योंकि 95% जो सुख है ना, उसको हम एनर्जी नहीं दे रहे, उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो वेस्ट में चले जाने के कारण से वो भारीपन, वो बर्डन हम फील करना शुरू करते हैं। तो इसलिए आज से क्या करना है, आज से क्या करना है, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो है उसको अप्रिशिएट करना सीखे। मतलब कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट टांगे ठीक है, कर्म तो कर सकती हूं, देख सकती हूं, सुन सकती हूं, राइट? तो बॉडी इंटैक्ट है, कितना बड़ा सुख है लाइफ का, है ना? और सर पर छत है, दो बारी का भोजन हम एक अच्छी तरह खा सकती हूं, कितना बड़ा सुख है ना? तो अगर छोटी छोटी चीजें मैं गिनती जाऊंगी ना अपने जीवन का, बहुत बड़ा सुख है। उसको छोड़कर के जो नहीं है ना, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में बढ़ती जाएगी। हाँ, एम्बिशन रखना चाहिए, लेकिन जो है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आज के लिए होमवर्क है, मेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हाट यू हैव एंड अप्रिशिएट इन योर लाइफ। आपके जीवन में क्या है जो अप्रिशिएट करते, छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा सुख जो आपके जीवन में है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, तो देखेंगे आप, आपका जो पूरा जो सोच है बदल जाएगा, है ना? वेस्ट थॉट्स कम होता जाएगा, नेगेटिव थॉट्स कम होता जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और चौथे प्रकार के थॉट्स है नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक सोच, जो अपने कर्म के प्रति हम सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति हम सोचते हैं, वो है नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक सोच। तो ये चारों ही प्रकार के विचारों में से अगर पॉजिटिविटी बढ़ता है तो मन की शक्ति बढ़ता जाएगा। और फिर नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम एनालाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं, तर्क करते हैं, डिस्क्रिमिनेट माने डिसर्न करते हैं, परखते हैं, वो जो हार्ड जो भी चीजें हैं वो हम हार्ड स्किल्स जिसको हम कहते हैं, डिसाइड करना, एनालाइज करना, ये सब कुछ इंटेलेक्ट के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम करते हैं। मन में जो विचार चलते हैं, बहुत सारे विचार चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब, लेकिन बुद्धि फिल्टर का काम करता है। जब जैसे आप यहां आने का निमंत्रण मिला आपको, आपको आप इनवाइटेड है इस प्रोग्राम के लिए, तो बहुत सारे विचार चले ना, जाना है नहीं जाना है, ये काम है, वो काम है, कैसे मैं मैनेज करूं, जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, बहुत सारे विचार आए। लेकिन जैसे ही आपने डिसाइड किया कि हाँ जाना है, तो ये सारे जो थॉट्स है फिजल आउट हो गया, डिसॉल्व हो गए। देन यू फोकस्ड ऑन फर्दर, जो भी आपको रिजर्वेशन करना है, कैसे पहुंचेंगे, क्या ले जाना है, वो फिर आप डिसाइड करना शुरू। जैसे डिसीशन लेते हैं, ये सारा फिजल आउट होता है, फिर आप कर्म में आते हैं। आपने डिसीशन लिया, आप यहां आए, राइट? तो फिर वो कर्म में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कई बार ये डिसीशन इतना इजी नहीं होता, राइट? कई बार बुद्धि क्लॉग्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्या डिसाइड करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, बहुत सारे चॉइसेस हैं। चॉइसेस में से एक चॉइस लेना है, डिसाइड करना है, इट्स नॉट दैट इजी। क्यों इजी नहीं होता? क्योंकि बुद्धि ब्लॉक्ड है। जैसे चाय की छन्नी है, अगर ब्लॉक्ड है क्या होगा, वो फिर जाएगा ही नहीं। बुद्धि इज लाइक दैट, छन्नी की तरह, फिल्टर की तरह है। बुद्धि ब्लॉक्ड है, वो बहुत सारे चॉइसेस है, वो डिसीशन नहीं हो पा रहा है, वो पास ऑन नहीं हो रहा है, बुद्धि क्लॉग्ड है, ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड है तभी भी प्रॉब्लम है, और फिर होल्स है। अगर चाय की छन्नी में होल है, जो डालेंगे सारा कुछ बह जाता है, वह फिल्टर नहीं होता है ना। तो ऐसे ही जो हमने सोचा कर लिया बिना समझे, इसलिए कहते हैं जो भी आप कर्म करते हो, सोच करके, समझ करके फिर कर्म करना कहते हैं। सोचा किया, समझे नहीं, तो फिर बाद में आप रिपेंट करेंगे, है ना। तो इसीलिए बुद्धि को क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन बहुत काम की चीज है। जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे, बुद्धि की क्लैरिटी बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छा करने के लिए मन क्लीन होना जरूरी है, बुद्धि क्लियर होना जरूरी है। क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट, ये दोनों होने से कर्म अच्छा होता जाएगा। जो आप कर्म करते जाएंगे, और यहां बुद्धि जो है वो हॉर्स राइडर है, मन जो है वो हॉर्स है, घोड़ा है। जो डेस्टिनेशन है, वो जो अंतिम जो डेस्टिनेशन है, वो कौन देगा? बुद्धि देगा। मुझे यहां जाना है, ये करना है, बुद्धि डिसाइड करता है। बुद्धि के अंदर वो ताकत है, लेकिन मन घोड़ा है, उसके द्वारा हम कर्म कर सकते हैं। जो हम कर्म करते जाएंगे, वो हमारा संस्कार बनता जाए। जितने बार आप रिपीट करेंगे वो पर्टिकुलर कर्म, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। इसीलिए कर्म को बदलना बहुत जरूरी है, ताकि संस्कार हम अपना बदल जाए। जैसे जो चोर है, जन्म से वो चोर नहीं होता, परिस्थिति के आधार से उसने डिसाइड कर लिया मुझे चोरी करना है। पहली बार जब चोरी करता है चोर, उसको कंफर्टेबल फील नहीं करता होता, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बन जाता है, वो नेचुरल बन जाता है। तो ऐसे ही कर्म जो भी हम करते हैं, वो संस्कार बनता है। लेकिन संस्कारों में भी बहुत प्रकार के संस्कार है आत्मा के अंदर। जो बच्चा एक दिन अभी अभी जन्मा है, उसके अंदर क्या संस्कार है, कौन सा संस्कार है? प्यूरिटी के संस्कार है। कोई बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा झोपड़पट्टी में घर जन्म ले रहा है, कोई फुटपाथ पे जन्म ले रहा है, कोई फिजिकल डिसीज के साथ जन्म ले रहा है, कोई तंदुरुस्त जन्म ले रहा है, अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है? अपने ही पास्ट कर्मों के आधार से जन्म होता है, राइट? तो इसीलिए वो बच्चे के अंदर, वो आत्मा के अंदर कौन सा संस्कार है? पास्ट बर्थ के संस्कार के कारण से वो बच्चा जन्म लिया है। और फिर कौन सी संस्कार एडअप होता है? पेरेंट्स के, है ना? पेरेंट्स की जीन्स एडअप होता है। अगर पेरेंट्स जो भी उनको सिखाते जाते हैं, पेरेंट्स में जो भी क्वालिटीज है, स्किल्स है, वो बच्चे के अंदर आता है, क्योंकि जीन्स के कारण से उस बच्चे के अंदर आता है। और फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एज द कंपनी ही किड्स, जिन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, जो देखता है, सुनता है, जो इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता जाएगा, उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता जाएगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट संस्कार, जो भी हुआ अच्छा या बुरा वो सारा कुछ, लेकिन अभी मैंने डिसाइड कर लिया जो भी हुआ है उसको मैं बदल सकती हूँ, वो फिर प्रेजेंट मैंने डिसीजन लिया उसको बदल सकते हैं। और इटर्नल संस्कार, जो अनादि अविनाशी ओरिजिनल जो संस्कार है हर आत्मा का, वो है क्या है? सातो ही गुण 100%, बहुत ही प्योर, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही लविंग, है ना? शुद्ध संस्कार आत्मा का, अनादि अविनाशी एटर्नल संस्कार है। मैंने रियलाइज किया, तो फिर मैं पुरुषार्थ करके, मेडिटेशन करके, अपने कर्मों को बदलते हुए मैं ऐसे एटर्नल संस्कार, शुद्ध संस्कार तक मैं अपने आप को ले जा सकती हूँ। ये है मेडिटेशन का असर। इस मेडिटेशन में क्या करना है, मेडिटेशन का प्रभाव क्या है? केवल शांति अनुभव करना मेडिटेशन का रिजल्ट नहीं होना चाहिए, वो बहुत छोटा लक्ष्य है। मेडिटेशन करने का लक्ष्य क्या है? ये पूरा संस्कार मेरा बदल जाए, ताकि मुझ आत्मा का जो ओरिजिनल शुद्ध संस्कार है वहां तक मैं अपने आप को ले जाऊं, ताकि फिर वो नेचुरल नेचर बन जाए, शांति मेरा नेचुरल नेचर बन जाए, सुख मेरा नेचुरल नेचर बन जाए, भले कितना भी परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन वो जो गुण 100% मुझ आत्मा के अंदर निरंतर हो, वो है मेडिटेशन का अंतिम लक्ष्य, ताकि फिर सुख शांति, जीवन में सुख शांति आनंद सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये है मन बुद्धि संस्कार के द्वारा हम अपने आप को समझते हुए अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए कहते हैं चेक एंड चेंज, अपने आप को देखे, अपने आप को देखे माना मन में क्या विचार चल रहे हैं उसको देखे, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको पॉजिटिविटी के तरफ ले जाते हुए, मेडिटेशन करते हुए इंटेलेक्ट को हम क्लियर करते जाएं, कर्मों को बदलते जाएं, संस्कार बदल जाएगा। ये है पूर्णतः आत्मा का परिचय। तो इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस, जैसे आज हमें पता चला आत्मा और शरीर ये अलग अलग है, तो अभी अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, लेकिन अपने आप को सोल समझते हुए उसके साथ आइडेंटिफाई करना है। और केवल बैठ करके की बात नहीं है, जो भी हम कर्म करते हैं उसके साथ हम इसको जोड़े, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा भोजन बना रही हूँ, मैं आत्मा उस आत्मा के साथ बात कर रही हूँ, मैं आत्मा एक कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा सो रही हूँ। तो कर्म करते समय भी बार बार अपने आप को आत्मा समझेंगे तो फिर आत्मा की एनर्जी बढ़ती जाएगी और फिर देखेंगे अपना जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो भी बहुत अच्छा होता जाएगा। उस इंसान को उस रीति से बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, उसके पोस्ट पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करने के कारण से हमारा जो रिलेशनशिप है, एनर्जी, रिलेशनशिप क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, आत्मा का आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए यहाँ जब आपने देखा होगा इस कैंपस के अंदर आते ही आपने महसूस किया होगा हर कोई कि चेहरे पर वो खुशी है, वो आनंद है, वो स्माइलिंग फेस है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि कोई किसी को भी हम उसके पोजीशन, उसके पोस्ट और उसके इसके कारण से हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको एक व्यक्ति के रूप में, एक आत्मा के रूप में हम आइडेंटिफाई करने के कारण से वहां कोई भी बैरियर्स नहीं। एक इंसान, एक आत्मा, आत्मा के साथ बात करने के कारण से वो ऊर्जा एक्सचेंज होता है, वो ऊर्जा एक्सचेंज होने के कारण से वो खुशी, वो आनंद, वो सुख की अनुभूति होना शुरू होता है। आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे आपके कार्य क्षेत्र में भी, अगर किसी के साथ अनबन हो रहा है, ये हो रहा है, अब केवल ये अभ्यास करें, ये सभी आत्माएं हैं, केवल ये सोच करके चले तो फिर आपकी बहुत कुछ परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके संबंधों में बहुत अंतर दिखाई देगा। ये है पूर्ण परिचय आत्मा का, स्वयं का। तो इसीलिए बॉडी अंतर क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में, देह भान जब होता है तो कंपैरिजन होता है, ये ऊंचा है, नीचे, ये फलाने धर्म का है, फलाने रिलीजन का, बहुत सारे कंपैरिजन्स होगा। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में क्या होगा, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, एक्सेप्टेंस है, वहां कोई डिवीजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हम सभी धरती के सितारे हैं। जैसे आकाश में सितारे हैं आत्माएं, ऐसे धरती के सितारे हैं, एक्सेप्टेंस होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में डिवीजन होगा, ये पराया या अपना, लेकिन आत्मा अभिमानी स्थिति में यूनिटी, हम सभी एक जैसे हैं, वहां कोई भी डिवीजन नहीं है। और देह भान में कर्मेंद्रियों के वशीभूत होंगे, मुझे ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, उसके वशीभूत होंगे। लेकिन आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा मालिक हूँ, जो मैं देखना चाहूँ वही देखूँ, जो मैं सुनना चाहूँ वही सुनूँ, जो मैं खाना चाहूँ वही खाऊं, कर्मेंद्रियों के मास्टर, राजा। और बॉडी कॉन्शियसनेस में मृत्यु का डर रहेगा, और लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में मुझे पता है एक दिन तो मुझे जाना है, कोई परमानेंट यहां नहीं रह सकता है ना। तो अवेयरनेस होने के कारण से फिर वो डर नहीं लगता। जैसे कोई भी एप्लीकेशन हम डालते हैं तो फिर पूरा परिचय हम देते हैं अपना, तो सोल का भी बायोडेटा क्या है, बायोडेटा देते हैं ना परिचय देने के लिए, क्या अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस में, तो सोल का बायोडेटा, नाम क्या है, नाम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, नाम, आत्मा, रूह, स्पिरिट, सोल, लाइफ फोर्स, एनर्जी, किस कोई भी कहते हैं, कह सकते हैं नाम। और फॉर्म क्या है, रूप क्या है, वो फोटो चिपकाते हैं ना फॉर्म के ऊपर, रूप क्या है, आत्मा कैसे दिखती है, पॉइंट ऑफ लाइट है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, स्टार है, लाइट है. ओके, फादर्स एंड मदर्स नेम कल पता चलेगा. ओके, एड्रेस, एड्रेस क्या है आपका? एक टेम्पररी एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है. टेम्पररी एड्रेस कौन सा है आपका? यहां ये बॉडी टेम्पररी एड्रेस है. क्यों टेम्पररी एड्रेस है? परमानेंट एड्रेस नहीं हो सकता ये. जाना है आज नहीं तो कल, सबको जाना है. तो ये टेम्पररी एड्रेस है मेरा. परमानेंट एड्रेस परमधाम, उसके बारे में कल पता चलेगा. परमधाम जो कहते हैं ना, अकेले आए थे, अकेले जाना है ना. तो कहां से आए, कहां जाना है, वो परमधाम जो मुक्ति धाम, परमात्मा का घर, पर सभी आत्माओं का घर है परमधाम. और डेट ऑफ बर्थ क्या है आत्मा का? डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं ना एप्लीकेशन में. डेट ऑफ बर्थ क्या है? अनादि अविनाशी है, इटर्नल है. आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं होता. जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं इस बॉडी का है, मृत्यु भी, डेथ डेट भी शरीर का होता है. डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ डेट बॉडी का होता है, शरीर आत्मा का नहीं. क्वालिफिकेशन क्या है आत्मा का? सातोगुणी. सातोगुण जो हमने देखा आत्मा के क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशन है ना. ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है आत्मा का? बॉडी को ऑपरेट करना ऑक्यूपेशन है. बस केवल ऑपरेट करना है. ऑपरेट करके क्या हासिल करना है? ऑपरेट करने के पीछे भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना. ऑपरेट तो सभी करेंगे, लेकिन लक्ष्य क्या है ऑपरेट करने का? सुख शांति की अनुभूति करना. यहां हम एक स्लोगन बताते हैं, ये है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन. मैं सर्व गुणों को अनुभव करूं और सभी को भी वो प्रेरणा दूं. मैं बदलूं तो संसार बदलेगा. ऐसा नहीं कि संसार बदले तो मैं बदलूं, है ना. मेरे बदलने से मैं दूसरों को प्रेरणा दे सकती हूं, तो मैं देती जाऊं. ये है ऑक्यूपेशन. सुख देना ऑक्यूपेशन है अपना दूसरों को. ये है पूरा बायोडेटा सोल का. So this is about the soul today. बहुत सारे प्रश्न भी होंगे आपके अंदर, लेकिन इन तीन दिन के अंदर अंतर्गत शायद आप सभी का जो भी प्रश्न है वो सबका उत्तर आपको मिल जाएगा. क्योंकि आज तो पहला इस सेशन है, बहुत सारे अनुभवी आत्माएं आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे अपना ज्ञान और अनुभव. तो जरूर आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, ठीक है. इसलिए अभी प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं, ठीक है. प्रश्न उत्तर लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर. अभी चलिए कुछ मेडिटेशन करेंगे. जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप करते जाएंगे. आसपास के वातावरण से, आवाजों से, लोगों से, मन और बुद्धि को डिटैच करें. प्रकृति के मध्य में केंद्रित करें। मन के स्क्रीन पर अपने आप को देखने की कोशिश करें। एक चमकता हुआ अजब सितारा, चैतन्य शक्ति आत्मा ब्रेन के बीचों बीच बहुत सुंदर रीति से चमक रहा है। प्रकृति के मध्य में विराजमान होकर पूरे शरीर का मैं नियंत्रण कर रही हूं। ये शरीर मेरी गाड़ी है, इसको ड्राइव करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये शरीर मेरा राज्य है जिसको चलाने वाली कंट्रोल करने वाली मैं आत्मा हूं। प्रकृति में के मध्य में बैठकर मैं आत्मा इन आंखों की खिड़कियों के द्वारा बाहर के जगत को देख रही हूं। देखने वाली मैं आत्मा हूं। भ्रुकुटि के मध्य में बैठकर कानून द्वारा मैं आत्मा सुन रही हूं। ये कान मेरे स्पीकर्स हैं। भ्रुकुटि के मध्य में बैठकर मैं मुख से बोल रही हूँ। बोलने वाली मैं आत्मा हूं। ये मुख मेरा माइक है। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म कर रही हूं। सोचने वाली, डिसीशन लेने वाली मैं आत्मा हूं।
मुझ आत्मा के अंदर अपरम अपार मनोबल है, मानसिक शक्ति है। जो मैं करना चाहूं मैं कर सकती हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप गुण मुझ आत्मा के निजी गुण है। सातों ही गुणों से मैं भरपूर हूं, संपन्न हूं, संपूर्ण हूं। मैं सातों ही गुण वाइब्रेशंस चारों तरफ फैला रही हूं। और हर एक को आत्मिक दृष्टि से देख रही हूं। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, ऐसे हर एक व्यक्ति भी ज्योति स्वरूप आत्मा है। स्वमान में स्थित होते हुए हर एक आत्मा को सम्मान दे रही हूं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैला रही हूं। ताकि हर आत्मा अपने निजी स्वरूप को समझते हुए अनुभव करें और अपने सातों ही गुणों को अपना निजी स्वरूप बनाए, ताकि ये संसार